हेलो एंड वेलकम टू तब से अब तक। मैं हूँ आपकी होस्ट शफाली और आज फिर से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, यानी कि वो जो बीच में आपने मेरा आर्टिस्ट अवतार देखा था वो अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा बिजी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि तब से अब तक शो एक्चुअली है तो स्टोरीज और फिलॉसफी का शो, सो इट शुड रिमेन व्हाट इट इज़ एंड दैट्स व्हाई आज की जो स्टोरी है वो फिर से हमें तब से अब तक के उसी अवतार को दिखाएगी जो हम पहले देखते थे। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी महाभारत से है, लेकिन ये महाभारत की उन स्टोरीज़ में है जो शायद आपने सुनी नहीं हो, क्योंकि ये वैसी स्टोरी नहीं है। ये जैसी स्टोरीज़ होती हैं जिसमें पात्र होते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्लॉट होता है और कैरेक्टर्स और प्लॉट से बढ़ के एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक चैलेंज होता है जो कि कोई पात्र सॉल्व करने के लिए निकला है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है लेकिन आप देखेंगे कि इस स्टोरी में एक ऐसी चीज़ है जो हमें फिर से वहीं ले आती है जहाँ हम अकेले खड़े होकर के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। और आज जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो क्वेश्चन ये है कि जब लोग हमारे पास एडवाइस मांगने आते हैं और हम उन्हें सही एडवाइस देते हैं तो आखिर वो उस एडवाइस को मानते क्यों नहीं। कई रीजंस हो सकते हैं और उनमें से एक रीज़न को हम आज देखेंगे और समझेंगे। ये बात तब की है जब पांडव जुए में हार गए थे और हारने के बाद वो वनवास के लिए निकल पड़े थे, तो ऑफ़ कोर्स उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, वो सजे धजे नहीं थे, वो रथ पे चढ़कर नहीं जा रहे थे, वो बस निकल पड़े थे क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ साथ ले जाने के लिए। तो जब वो निकले तो हस्तिनापुर के कई सारे निवासी निकल करके उनके साथ चल पड़े, उनमें कुछ ब्राह्मण भी थे। अब नॉर्मल निवासियों और ब्राह्मणों के बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है, स्पेशली उनके लिए जो क्षत्रिय होते हैं। ओके, जस्ट रिमेंबर कि हम ये महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण भी साथ चले और उन्होंने कहा कि महाराज हम वहीं जाएंगे जहां आप हैं, तो युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया वो क्या करें। उनके पास खुद कुछ खाने पीने को था नहीं, अपने भाइयों को द्रौपदी को खिलाने के लिए कुछ खास था नहीं। थैंकफुली उनकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती थी जा करके, वो वहीं रह गई थी विदुर के घर में, कुंती उनकी मदर। युधिष्ठिर काफ़ी परेशान थे और उन्होंने काफ़ी समझाया ब्राह्मणों को कि देखिए अब बाकियों का तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स वो अपने आप देख लेंगे अपने को, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपकी देखभाल करें, बट हमारे पास कुछ नहीं है खाने पीने को। बट ब्राह्मणों ने फिर भी ठानी हुई थी कि वो साथ जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने जब अगले दिन की सूरज की आरती की तो उन्होंने यही बात अपनी प्रार्थना में सूर्यदेव को बताई, और जब सूर्यदेव ने यह सुना तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, और वर के नाम पे उन्होंने एक तांबे का घड़ा उन्हें पकड़ाया और कहा कि ये अक्षत पात्र है, इसमें से खाना तब तक निकलता रहेगा जब तक तुम्हें ज़रूरत है, कितनों को भी तुम्हें खिलाना है इसमें से खाना निकलेगा, इसमें से चार तरह के व्यंजन निकलेंगे, लेकिन जब द्रौपदी खा लेगी उसके बाद इसमें से भोजन निकलना बंद हो जाएगा। ये कहकर के उन्होंने अक्षत पात्र उन्हें पकड़ा दिया। युधिष्ठिर ने ऑफ कोर्स बड़ी खुशी खुशी वो अक्षत पात्र उठाया, फिर उन्होंने उससे सारे ब्राह्मणों को खिलाया, उन्होंने अपने भाइयों को खिलाया, खुद खाया, और फिर द्रौपदी ने जब खा लिया तो उस अक्षत पात्र में खाना बनना बंद हो गया। तो एक साइड पे तो ये सब चल रहा था, दूसरी साइड पे यानी कि हस्तिनापुर में महल के अंदर धृतराष्ट्र परेशान हाल घूम रहे थे। आप कहेंगे परेशान क्यों थे, उन्होंने ही तो भेजा था। वो परेशान शायद इसलिए थे क्योंकि वो खुद ये नहीं करना चाहते थे और उन्होंने एक तरह से दुर्योधन के दबाव में, बेटे के प्यार में आकर के ये सब किया। एंड ऑब्वियसली जब उन्होंने ये सब किया तो उनके दिल पर एक बोझ सा था, उन्हें लग रहा था मैंने कुछ ठीक नहीं किया। तो वो पहुँचे विदुर के पास, और ये तो आपको पता ही है कि विदुर उनके भाई थे, सौतेले भाई थे। मैंने शायद वो स्टोरी आपको सुनाई नहीं है, लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि किस तरह से विदुर धृतराष्ट्र के और पांडु के भाई थे। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक दासी पुत्र थे, तो इसलिए वो इस फाइट में नहीं थे, राजा बनने की फाइट में वो नहीं थे। वो एक गुरु थे, वो वहीं रहते थे हस्तिनापुर में, और धृतराष्ट्र और विदुर काफ़ी क्लोज थे। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि दिस इज़ द टाइम व्हेन आई शुड गो एंड कंसल्ट हिम, उनसे पता किया जाए, उनसे बात की जाए, वो ज़रूर ऐसा कुछ बताएंगे जिससे मेरे दिल को शांति मिले। तो धृतराष्ट्र वहाँ पहुँच गए और उन्होंने विदुर से कहा, विदुर दिल पे बड़ा बोझ है। एंड ऑफ कोर्स विदुर भी उसी सभा में थे जब ये सब हो रहा था, जब जुए का खेल चल रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और वो बड़े परेशान थे और उन्होंने बड़ा रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी बात नहीं मानी गई थी। तो जब विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक लास्ट डिच अटेम्प्ट में मैं इनको सही बात समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये सोचकर विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि आप ये समझिए कि आपको ये परेशानी इसलिए है, आपके दिल में ये तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप पछतावा कर रहे हैं जो आपने किया उस पर, और इस पछतावे को मैं सही मानता हूँ क्योंकि आपने जो किया वो बहुत गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट बहुत बहुत पहले जब दुर्योधन पैदा हुआ था तब मैंने कहा था आप इसे त्याग दें, आपने मेरी बात नहीं मानी थी। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आप दुर्योधन को समझाएं, अगर वो नहीं समझता है तो आप उसे सजा दें, लेकिन दुर्योधन इस लायक नहीं है कि वो राजा बने। आपको युधिष्ठिर को प्यार से वापस लाकर उन्हें राजा बनाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, और जनता युधिष्ठिर से बहुत प्यार करती है। आपने खुद देखा होगा किस तरह से लोग निकल आए थे रास्तों पर, किस तरह से कितने उनके साथ साथ चले गए जंगल की तरफ। तो मेरा ये सोचना है कि आप अपनी गलती को करेक्ट कीजिए और दुर्योधन को राजा ना बना करके युधिष्ठिर को राजा बनाइए, और आप दुर्योधन को ये समझाइए कि भाइयों को प्यार से रहना है और युधिष्ठिर एक्चुअली उम्र में भी दुर्योधन से बड़े हैं, तो उनका बनता भी है। जब धृतराष्ट्र ने ये बात सुनी, ये एडवाइस सुनी, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, विदुर मुझे लगता है कि ये एडवाइस ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बायस्ड है, क्योंकि तुम अंदर से ये नहीं चाहते कि मेरे बेटों का अच्छा हो, क्योंकि तुम्हारी एडवाइस के हिसाब से पांडवों का तो बड़ा फायदा हो जाएगा लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, और मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कपट है। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे आगे कोई एडवाइस चाहिए ही नहीं। ये कहकर धृतराष्ट्र चले गए और ये कहानी यहां खत्म हो गई। इस कहानी में हम दो लोगों का पर्सपेक्टिव देखते हैं, एक धृतराष्ट्र का और एक विदुर का। विदुर का पर्सपेक्टिव एक एडवाइजर का पर्सपेक्टिव है, जिसके पास कोई आया उससे एक एडवाइस मांगने, सलाह मांगने। उसने सही सलाह दी, उसने सच कहा, तो जो एडवाइस मांगने आया था वो बुरा मान के चला गया। खैर, धृतराष्ट्र राजा थे, वो ओपनली विदुर के मुंह पे कह सकते थे कि मुझे तुम्हारी सलाह पसंद नहीं आई। बट हाँ, हमारे साथ भी अक्सर होता है, लोग हमारे पास सलाह मांगने आते हैं और जब हम सही सलाह देते हैं तो वो सलाह को मानते नहीं, और फिर हम ये सोचते हैं कि अगर सलाह मांगने आए थे, अगर सलाह चाहिए थी तो फिर सलाह मानी क्यों नहीं। अगर आप एडवाइजर हैं, आपसे लोग सलाह मांग रहे हैं, आपकी मान नहीं रहे, तो इन दैट केस मेरा सजेशन ये है कि चिंता मत कीजिए, अक्सर ये होगा, क्योंकि लोग सलाह मांगने अलग अलग रीजंस से आते हैं। अगर हम धृतराष्ट्र के रीजन को देखें तो उनका रीजन ये था कि उनके अंदर उन्हें ये पता था कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। तो एक तरह से विदुर के पास शायद वो ये सोच के गए थे कि मैं विदुर से बातचीत करूंगा और विदुर शायद मुझे समझाएगा कि जो तुमने किया धृतराष्ट्र ठीक किया। आफ्टर ऑल गलती किसकी थी? युधिष्ठिर की। उनको मानना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसे बेवकूफ को हम क्यों राजा बनाएं? प्रॉब्ली उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी और वो ये सोच रहे होंगे कि एक तरह से उनके अंदर जो जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि एक तरह का कंफ्यूजन जो उनके दिमाग में था, उसे रेस्ट मिल जाएगा। ये तो धृतराष्ट्र का रीज़न हुआ। तो ऑफ कोर्स अगर कोई फैमिली मैटर्स में आपके पास बातचीत करने आया है, आपकी सलाह मांग रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कुछ एडवाइस दीजिए, तो पहले आप ये असेस कीजिए कि क्या उसने पहले से डिसीजन लिया हुआ है। अगर उसने लिया हुआ है तो इन दैट केस एडवाइस देने का कोई खास फ़ायदा है नहीं। आप उससे पता कीजिए कि उसने क्या सोचा है। फिर अगर आपको ये लगता है कि एक्चुअली रैशनली आप रीज़न आउट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड। बट आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई आपसे सलाह मांगने आए, लेट अस से आपका फ्रेंड ही है और आप खाली एक तरफा बातचीत को समझ के उसे डिसीजन दें, एक एडवाइस दें और वो ना माने उसको, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। अगर कोई फ्रेंड आपके पास आए तो फिर आप क्या करें? मैं कुछ दिनों पहले एक सीरियल देख रही थी तो उसमें एक कपल के बीच में थोड़ा इस बात के लिए कन्फ्यूजन हो गया कि जो लड़का था उसने लड़की को सपोर्ट नहीं किया। तो लड़की ने बाद में कहा कि क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो उसने कहा कि क्योंकि तुम गलत थी। तो उसने कहा, गलत हो या सही, हम एक कपल हैं एंड दूसरों के सामने यू शुड सपोर्ट मी। तो ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि अगर आप फ्रेंड हैं तो आप हर गलत सही बात में हमारा साथ देंगे। वेल दैट कुड बी अनदर रीज़न। अगर आप उस समय रैशनली बात कर रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। प्रॉब्ली वो जाके फिर वही गलती करेंगे जो आपकी एडवाइस के बिना करते। तो एज एन एडवाइज़र आई वुड से ये समझना, ये सोचना कि आपने एडवाइस दी है वो मानी जाएगी, और इस बात के लिए गम मनाना कि नहीं मानी गई, ये ठीक बात नहीं है। आई वुड से आप अपने को ही हार्म कर रहे हैं। आप डिसीजन लीजिए कि क्या सही एडवाइस है, आप सही एडवाइस दीजिए, और उसके बाद अगर उस एडवाइस को नहीं माना जाए तो जस्ट डोंट माइंड, बिकॉज शायद वो अपना कॉग्निटिव डिसोनेंस, अपने अंदर का कन्फ्यूजन को कम करने आए हों आपके पास। शायद वो इस उम्मीद में आए हों कि आप उनके फ्रेंड हैं तो आप उनका जो भी उन्होंने गलत डिसीजन लिया है आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक था। शायद वो इसलिए आए हों आपके पास कि वो आपको अच्छा समझते हों, एडवाइज़र की कैपेसिटी में समझते हों, बट उनको आपकी इस एडवाइस में वो बात नहीं लगी हो। उनको लगा हो यार ये एडवाइस थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। आपके हिसाब से ठीक थी, उनके हिसाब से ठीक नहीं है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं लाइफ में और अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, और इस हिसाब से हमारा माइंड अलग अलग तरह से डेवलप होता है। हमारे लिए क्या सही है वो सब लोगों के लिए डिफरेंट होता है। जो मेरे लिए सही है शायद आपके लिए ना हो। तो जब आप इस बात को एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो जब कोई आपसे एडवाइस मांगने आएगा और आपकी एडवाइस नहीं मानेगा, आप बुरा नहीं फील करेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट क्वालिटी। इट विल गिव यू मैनी मोर फ्रेंड्स, ऑनेस्टली। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो एडवाइस मांगने वाले का पर्सपेक्टिव है, वेल हमने मोर और लेस कवर कर ही लिया है। बट मैं ये सोचती हूँ कि जब आदमी परेशान होता है तो एडवाइस मांगता है, चाहे वो अपने दिमाग के कन्फ्यूजन को कम करने के लिए मांग रहा हो, चाहे वो वाकई एक रास्ता खोज रहा हो, उसे ना मिल रहा हो, वो एडवाइस मांगेगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एडवाइस मांगने निकले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से एडवाइस मांगिए जो कि आपको सही, लॉजिकल, करेक्ट एडवाइस दें, क्योंकि ऐसे भी बहुत से हैं, बहुत से स्मार्ट लोग हैं जो ये समझते हैं कि एक्चुअली आप अपने दिमाग के कन्फ्यूजन को कम करने के लिए उनके पास आए हैं, तो वो आपको वही एडवाइस देंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं। यस, दैट्स द ट्रूथ। ऐसे लोग हैं, वो आपको क्रॉस नहीं करेंगे, उनकी एडवाइस ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो एज अ पर्सन हु इज़ सीकिंग एडवाइस, आपको थोड़ा सा केयरफुल तब भी होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई थॉट के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिर से किसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करेंगे मिलके। बाय। हाँ, आपसे एक छोटी सी बात मैं और करना चाहती थी, वो ये कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप तब से अब तक शो को अमेज़न म्यूज़िक या फिर गाना पे सुन रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तब से अब तक शो स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल और जियो सावन सब पे अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज़ डू अ क्विक सर्च। एक बार आप सर्च कर लें, फिर उसे फॉलो कर लें, एंड देन यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड इट ऑन योर फेवरेट ऐप। थैंक यू वेरी मच। बाय।